का था, रूह वही रूप नया।
दिलेर मुजरिम के भाग दो में आपने सुना कि सर्कस जाकर किस तरह फरीदी ने उस नेपाली कातिल का पता लगा लिया जिसने सविता देवी का कत्ल किया था, मगर उस नेपाली कातिल का भी कत्ल हो गया। कातिल का कत्ल होने के बाद फरीदी के जहन में एक बात आई कि राजरूप नगर के नवाब वजाहत अली मिर्जा आखिरकार शौकत मियां से इलाज करवा रहे थे। चीफ इंस्पेक्टर और कमिश्नर ने ये केस फरीदी को सौंप दिया। क्या नवाब वजाहत अली के दुश्मन शौकत को कत्ल करने का इरादा रख सकते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए भाग तीन। राजरूप नगर में नवाब वजाहत मिर्जा की आलीशान कोठी बस्ती से लगभग 1.5 मील की दूरी पर खड़ी थी। नवाब साहब बहुत शौकीन आदमी थे, इसलिए उन्होंने इस कस्बे को नन्हा मुन्हा सा खूबसूरत शहर बना दिया था। बस सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट की कसर रह गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कोठी में एक ताकतवर डायनामो लगा रखा था इस कमी को पूरा करने के लिए। अलबत्ता कस्बे वाले बिजली की रोशनी से महरूम थे। कोठी के चारों तरफ 4 फरलांग के इलाके में खुशनुमा बाग लगे हुए थे। नवाब साहब की कोठी से 1.5 फरलांग की दूरी पर एक पुरानी इमारत थी जिसमें एक छोटा सा मीनार था। किसी जमाने में इस मीनार का ऊपरी हिस्सा खुला रहा होगा और नवाब साहब के पूर्वज उस पर बैठकर मौज मस्ती करते रहे होंगे, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया था। सिर्फ 2 खिड़कियां खुली रह गई थी। एक खिड़की में एक बड़ी सी दूरबीन लगी थी जिसका व्यास लगभग 1 फुट रहा होगा। इस इमारत में मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर इमरान रहता था। नवाब साहब ने ये पुरानी इमारत उसे किराए पर दे रखी थी। उसने इस मीनार की ऊपरी मंजिल के चारों तरफ बंद करवा के उस पर सितारों की रफ्तार का जायजा लेने वाली अपनी बड़ी दूरबीन फिट करवा ली थी। कस्बे वालों के लिए वो एक संदिग्ध आदमी था। बहुतों का ख्याल था कि वो पागल है। उसे आज तक किसी ने इस 4 फरलांग के इलाके से बाहर जाते नहीं देखा था। इंस्पेक्टर फरीदी कोठी के करीब पहुंचकर सोचने लगा कि किस तरह अंदर जाए। अचानक एक नौकर बरामदे में आया। फरीदी ने आगे बढ़कर उससे पूछा, नवाब साहब की तबीयत कैसी है?
जी अभी तो वही हाल है। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं?
नौकर उससे बोला,
मैं डेली न्यूज का रिपोर्टर हूँ और कुंवर सलीम से मिलना चाहता हूँ। यहाँ अंदर हॉल में आ जाइए, मैं उन्हें खबर करता हूँ।
फरीदी बरामदे से गुजरकर हॉल में दाखिल हुआ। हॉल के दीवारों पर चारों तरफ नवाब साहब के पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। फरीदी उनको देखने लगा, तभी वो चौंक पड़ा। उसकी नजरें एक पुरानी तस्वीर पर जा टिकी थीं। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे घनी मूछों और दाढ़ी के पीछे कोई जाना पहचाना चेहरा है।
अरे वो मारा बेटा फरीदी ही,
वो अपने आप में ही बड़बड़ाया। वो कदमों की आहट से चौंक पड़ा। सामने के दरवाजे में एक लंबा तगड़ा नौजवान कीमती सूट पहने खड़ा था। पहले तो वो फरीदी को देखकर झिझका, फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा।
अरे साहब मैं तो रिपोर्टरों से तंग आ गया हूँ, कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं? वो हंसकर बोला।
शायद मैं कुंवर साहब से बात कर रहा हूँ, फरीदी ने अदब से कहा।
जी हाँ मुझे कुंवर सलीम कहते हैं, जो कुछ पूछना है जल्दी पूछिए, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, उसने बेदिली से कहा।
नवाब साहब का अब क्या हाल है?
अभी तक होश तो नहीं आया।
और कुछ, कब से बेहोश हैं?
15 दिन से। फैमिली डॉक्टर की राय है कि ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन कर्नल तिवारी इसके हक में नहीं है।
अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए, सलाम। वो ये कहकर उसी दरवाजे की तरफ घूम गया जिस तरफ से वो आया था। फरीदी के पास वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब वो पुरानी कोठी के पास से गुजर रहा था तो एकदम से उसकी हैट उछलकर उसकी गोद में आ गई। हैट में एक बड़ा सा छेद हो गया था। उसने धीमे से कहा,
अरे 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 बाल बाल बचे फरीदी साहब, आप कभी मोटर की छत गिराकर सफर ना करना।
अभी तो इस बेआवाज राइफल ने तुम्हारी जान ही ले ली थी।
हाँ,
थोड़ी दूर चलकर उसने कार रोक ली और पुरानी कोठी की तरफ पैदल चल पड़ा। बाढ़ की आड़ से उसने देखा कि पुरानी कोठी के बाग में एक अजीबोगरीब बूढ़ा एक छोटी सी नाल वाली राइफल लिए गिलहरियों के पीछे दौड़ रहा था।
फरीदी बाढ़ लांघ कर अंदर पहुंच गया। बूढ़ा चौंक कर उसे हैरत से देखने लगा। बूढ़े को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुर्दा कब्र से उठकर आ गया हो या फिर वो कोई भूत हो। उसका रंग हल्दी की तरह पीला था, बाल क्या भवें तक सफेद हो गई थी, चेहरा लंबा था और गालों की हड्डियां उभर आई थी, दाढ़ी मूछ साफ, होंठ बहुत पतले थे, लेकिन आंखों में बला की चमक और जिस्म में जबरदस्त फुर्ती थी। वो उछलकर फरीदी के करीब आ गया।
मुझसे मिलिए, मैं हूं प्रोफेसर इमरान, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। और आप?
मुझे आपके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो उस खौफनाक हथियार में दिलचस्पी ले रहा हूं जो आपके हाथ में है, फरीदी ने उसे घूर कर कहा।
हथियार? अरे ये तो मेरी दूरबीन है। बेवकूफ,
बूढ़े ने खौफनाक कहकहा लगाया। वो दूरबीन ही सही, लेकिन अभी उसने मुझे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया होता। फरीदी ने अपने हैट का सुराख उसे दिखाया। बूढ़े की आंखों से खौफ झांकने लगा। उसने एक बार गौर से राइफल की तरफ देखा और फिर हंसकर कहने लगा,
शायद आप ठीक कह रहे हैं, ये वाकई राइफल है, मैं गिलहरियों का शिकार कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ और अपनी दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाता हूँ।
बूढ़े ने फरीदी का हाथ अपने हाथ में लेकर इस जोर से दबाया कि उसके हाथ की हड्डियां दुखने लगीं। उस बूढ़े में इतनी ताकत देखकर फरीदी बौखला गया।
आइए अंदर चलिए, आप एक अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं।
वो फरीदी का हाथ पकड़कर पुरानी कोठी में घुस गया।
आजकल गिलहरियों और छोटे जानवरों में मेरी खास दिलचस्पी है, आइए मैं आपको उनके नमूने दिखाऊं।
वो फरीदी को एक अंधेरे कमरे में ले जाता हुआ बोला। कमरे में अजीब तरह की बदबू फैली हुई थी। बूढ़े ने कई मोमबत्तियां जलाईं। कमरे में चारों तरफ मुर्दा जानवरों के ढांचे रखे हुए थे। बहुत से छोटे जानवर कीलों की मदद से लकड़ी के तख्तों में जकड़ दिए गए थे। इनमें से कई खरगोश और कई गिलहरियां तो अभी तक जिंदा थीं, जिनकी तड़प बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। कभी कभी कोई खरगोश दर्द से चीख उठता था। फरीदी को ऊब सी होने लगी थी और वो कमरे से घबरा कर बाहर निकल आया।
आइए अब आपको अपनी दूरबीन दिखाऊं।
ये कहकर वो मीनार की सीढ़ियां चढ़ने लगा। फरीदी भी उसके पीछे चल रहा था। मीनार लगभग 25 फुट चौड़ा रहा होगा। आखिर में वो एक कमरे में दाखिल हुए जो ऊपर की मंजिल पर था। वहीं एक खिड़की में दूरबीन लगी थी।
यहाँ आइए।
वो दूरबीन के पास शीशे पे झुक गया।
मैं इस वक्त नवाब साहब के कमरे का मंजर साफ देख रहा हूँ, जैसे वो यहाँ से सिर्फ 5 फुट की दूरी पर हो। नवाब साहब लेटे हैं, उनके सरहाने उनकी भांजी बैठी है, ये लीजिए देखिए।
फरीदी ने अपनी आंख शीशे से लगा दी। सामने वाली कोठी की बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी और कमरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कोई आदमी सिर से पैर तक मखमल का लिहाफ ओढ़े लेटा था और एक खूबसूरत लड़की उसके सिरहाने बैठी थी।
मैं सामने वाले कमरे के बहुत से राज जानता हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं?
बूढ़ा फरीदी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला।
बस करो, आओ अब चलें।
मुझे किसी के राज जानने की कोई जरूरत नहीं है, फरीदी अपने कंधे उचकाता हुआ बोला।
क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये जुमला तुमने सिर्फ इसलिए कहा है कि मैं सारे राज उगल दूँ। तुम खतरनाक आदमी मालूम होते हो। अच्छा अब चलो, मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दूँ।
दोनों नीचे उतर आए। अभी वे हॉल ही में थे कि दरवाजे पर कुंवर सलीम की सूरत दिखाई दी। आप यहाँ कैसे? क्या आप प्रोफेसर को जानते हैं? उसने फरीदी से पूछा। जी नहीं, लेकिन आज उन्हें इस तरह जान गया हूं कि जिंदगी भर भुला ना सकूंगा। क्या मतलब? आप गिलहरियों का शिकार करते करते आदमी का शिकार करने लगे थे, फरीदी प्रोफेसर के हाथ में दबी हुई राइफल की तरफ इशारा करते हुए बोला। मेरी हैट देखिए। ओह समझा समझा प्रोफेसर, तुम हमारी कोठी खाली कर दो वरना मैं तुम्हें पागलखाने भिजवा दूंगा, समझे? कुंवर सलीम तेज आवाज में बोला। बूढ़े ने डरते हुए कुंवर सलीम की तरफ देखा और भागकर मीनार के जीनों पर चढ़ता चला गया। माफ कीजिए, ये बूढ़ा पागल है, बेकार ही हमारी परेशानियां बढ़ा रखी हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। फरीदी ने अपनी कार को कस्बे की तरफ मोड़ दिया। अब वो नवाब के फैमिली डॉक्टर से मिलना चाहता था। डॉक्टर तौसीफ एक बूढ़ा आदमी था। इससे पहले वो सिविल सर्जन था। पेंशन लेने के बाद उसने अपने पुराने मकान में रहना शुरू कर दिया था, जो राजरूप नगर में स्थित था। उसकी गिनती कस्बे के इज्जतदार और दौलतमंद लोगों में होती थी। फरीदी को उसका घर मालूम करने में कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर तौसीफ इंस्पेक्टर फरीदी को शायद पहचानता था, इसलिए वो उसके आ जाने से कुछ घबरा सा गया था। मुझे फरीदी कहते हैं, फरीदी ने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा।
मैं आपको जानता हूं, कहिए कैसे आना हुआ?
डॉक्टर तौसीफ ने हाथ मिलाते हुए कहा। डॉक्टर साहब, मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में आपसे राय लेने आया हूं।
ठीक है, अंदर चलिए।
आप ही नवाब साहब के फैमिली डॉक्टर हैं? फरीदी ने सिगार लाइटर से सुलगाते हुए कहा।
जी हाँ, बोलिए।
डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा। क्या कर्नल तिवारी आपके कहने पर नवाब साहब का इलाज कर रहे हैं? वो अचानक पूछ बैठा। डॉक्टर तौसीफ चौंक कर उसे घूरने लगा।
लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं?
डॉक्टर साहब, मुझे दिमागी बीमारियों के इलाज की थोड़ी सी मालूमात है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस तरह की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ऑपरेशन। आखिर ये कर्नल तिवारी देर क्यों कर रहे हैं? ये चीज मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। कर्नल तिवारी एक नौजवान डॉक्टर से इलाज करवाने की बजाय जो इस बीमारी को चुटकियों में ठीक कर सकता है, एक बूढ़े डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं।
मेरा ख्याल है कि आप मेरे निजी मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं,
डॉक्टर तौसीफ ने नाराज होते हुए कहा। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं नवाब साहब की जान लेने की एक गहरी साजिश का पता लगा रहा हूँ और इस सिलसिले में आपसे मदद लेना चाहता हूँ।
क्या?
डॉक्टर तौसीफ ने चौंक कर कहा और फिर उदास हो गया। जी हाँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? फरीदी ने सिगार का कश लेकर कहा।
बात दरअसल ये है इंस्पेक्टर साहब, कि मैं खुद भी इस मामले में बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या करूं, खुद नवाब साहब की यही ख्वाहिश थी। उन्हें तो एक बार कर्नल तिवारी के इलाज से फायदा हो भी चुका है।
लेकिन मुझे तो मालूम हुआ कि कर्नल तिवारी को इलाज के लिए उनके खानदान वालों ने चुना है।
नहीं, ये बात नहीं है। अलबत्ता उन्होंने मेरी ऑपरेशन वाली बात नहीं मानी थी। मैं आपको वो खत दिखाता हूँ जो नवाब साहब ने दौरा पड़ने के एक दिन पहले मुझे लिखा था।
डॉक्टर तौसीफ उठकर कमरे में चला गया और फरीदी सिगार के कश लेता हुआ अधखुली आंखों से छत को ताकता रहा।
ये देखिए, नवाब साहब का खत।
डॉक्टर तौसीफ ने फरीदी की तरफ एक खत बढ़ाते हुए कहा। फरीदी खत को पढ़ने लगा। खत नवाब साहब के लेटर पैड पर लिखा गया था। फरीदी खत पढ़ रहा था। डियर डॉक्टर, आज दो दिन से मुझे मालूम हो रहा है कि मुझे दौरा पड़ने वाला है। अगर आप शाम तक कर्नल तिवारी को लेकर आ जाएं तो ठीक है। पिछली बार भी उनके इलाज से मुझे फायदा हुआ था। मुझे खबर मिली है कि कर्नल तिवारी आजकल बहुत मशगूल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें लेकर आ ही जाएंगे। आपका वजाहत मिर्जा। डॉक्टर साहब, क्या आपको यकीन है कि यह खत नवाब साहब के ही हाथ का लिखा हुआ है? फरीदी ने खत पढ़कर कहा।
उतना ही यकीन है जितना कि इस बात पर कि इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। मैं नवाब साहब की लिखावट लाखों में पहचान सकता हूँ।
अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या आपने कभी इतनी चौड़ाई रखने वाले कागज का इतना छोटा पैड भी देखा है? कितना बेढंगा मालूम हो रहा है। ओह, ये देखिए, साफ मालूम होता है कि दस्तखत के नीचे से किसी ने कागज का बाकी टुकड़ा कैंची से काटा है। डॉक्टर, क्या आपको ये इसी हालत में मिला था?
जी हाँ, बिल्कुल,
डॉक्टर ने हैरान होकर कहा।
लेकिन मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा।
वही मैं बताने जा रहा हूँ। क्या ये मुमकिन नहीं कि नवाब साहब ने खत लिखकर दस्तखत कर देने के बाद भी नीचे कुछ और लिखा हो, जिसे किसी ने बाद में कैंची से काट कर उसे बराबर करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि नवाब साहब इतने कंजूस नहीं हैं कि बाकी बचा हुआ कागज काट कर रख लें।
उफ, मेरे खुदा, यहां तक तो मेरी नजर ही नहीं पहुंची थी।
डॉक्टर ने सिर पकड़ लिया। बहरहाल हालात कुछ ही क्यों ना हो, क्या आप बहैसियत फैमिली डॉक्टर इतना नहीं कर सकते कि कर्नल तिवारी की बजाय किसी और डॉक्टर से इलाज करवाएं?
मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हूं फरीदी साहब। हालांकि नवाब साहब ने कई बार मुझे ऑपरेशन के बारे में बात की थी, और हाँ, क्या नाम है उसका, इस सिलसिले में सिविल अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शौकत का भी नाम आया था।
अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया है, फरीदी ने हाथ मलते हुए कहा। हो सकता है खत लिख चुकने के बाद नवाब साहब ने ये लिखा हो कि अगर कर्नल तिवारी ना मिल सके तो डॉक्टर शौकत को लेते आइएगा। इस हिस्से को किसी ने गायब कर दिया हो। तौसीफ ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि आप डॉक्टर शौकत से जरूर मिल लीजिए, कम से कम इस सूबे में वो अपना जवाब नहीं रखता।
मैं उसकी तारीफें अखबार में पढ़ता रहता हूँ और एक बार मिल भी चुका हूँ। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नवाब साहब का 100% कामयाब ऑपरेशन वो कर सकता है। लेकिन फरीदी साहब, मैं कर्नल तिवारी के मौजूदगी से बिल्कुल बेबस हूँ। ऐसा झक्की आदमी तो आज तक मेरी नजरों में गुजरा ही नहीं।
कर्नल तिवारी की आप फिक्र ना कीजिए, इसका इंतजाम मैं कर लूंगा। आप जितनी जल्द हो सके डॉक्टर शौकत से मिलकर बात कर लीजिए।
आप कर्नल तिवारी का क्या इंतजाम करेंगे?
इंतजाम करना कैसा, वो तो करीब करीब हो चुका है, फरीदी ने सिगार जलाते हुए कहा।
मैं आपका मतलब नहीं समझा।
3 दिन बाद कर्नल तिवारी का यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ऊपर से हुक्म आ गया है, मुझे सूत्रों से खबर मिली है, लेकिन खुद कर्नल तिवारी को अभी तक इसका पता नहीं चला। उन्हें इतनी जल्दी जाना होगा कि शायद वो धोबी के यहाँ से अपने कपड़े भी ना मंगा सकेंगे। लेकिन ये राज की बात है, इसे अपने तक ही रखिएगा।
अरे ये भी कोई कहने की बात है,
डॉक्टर तौसीफ ने कहा। अच्छा तो अब मैं चलूं, आप कर्नल तिवारी के ट्रांसफर की खबर सुनते ही डॉक्टर शौकत को यहाँ ले आइएगा। मेरा ख्याल है कि उस वक्त फिर किसी को एतराज नहीं होगा। हाँ देखिए, इसका ख्याल रहे कि मेरी मुलाकात का हाल किसी को पता ना चलने पाए, खासकर नवाब साहब के खानदान के किसी भी आदमी को और उस सनकी बूढ़े प्रोफेसर को इस बात की खबर ना होने पाए। साहब, मुझे तो वो बूढ़ा पागल मालूम होता है।
मेरी भी उसके बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं है।
आखिर वो है कौन, फरीदी ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा।
मेरे ख्याल से वो नवाब साहब का कोई रिश्तेदार है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि नवाब साहब ने मेरे ही सामने उससे पुरानी कोठी का किराया नामा लिखवाया था, बल्कि मैंने ही उस पर गवाह की हैसियत से दस्तखत किए थे।
खैर, अच्छा अब मैं जाना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही डॉक्टर शौकत से मुलाकात करेंगे। सलाम, फरीदी ने उठते हुए कहा। फरीदी की कार तेजी से शहर की तरफ जा रही थी, आज उसका दिमाग बहुत उलझा हुआ था। बहरहाल वो जो मकसद लेकर राजरूप नगर आया था उसमें अगर बिल्कुल नहीं तो थोड़ी बहुत कामयाबी उसे जरूर मिली थी। अब वो आगे के लिए प्रोग्राम बना रहा था। जैसे जैसे वो सोच रहा था उसे अपनी कामयाबी का पूरा यकीन होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक घनी झाड़ियां थी, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक जगह उसे बीच सड़क पर एक खाली तांगा नजर आया, वो भी इस तरह जैसे वो खास तौर पर रास्ता रोकने के लिए खड़ा किया गया हो। फरीदी ने कार की रफ्तार धीमी करके हॉर्न देना शुरू किया, लेकिन दूर नजदीक कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। सड़क ज्यादा चौड़ी न थी, इसलिए फरीदी को कार रोककर उतरना पड़ा। तांगा किनारे लगाकर वो गाड़ी की तरफ लौट ही रहा था कि उसे दूर झाड़ियों में से एक भयानक चीख सुनाई दी। कोई भर्राई हुई आवाज में चीख रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे बार बार चीखने से उसका मुंह दबा लिया जाता है और वो गिरफ्त से निकलने के बाद फिर चीखने लगता है। फरीदी ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर आवाज की तरफ दौड़ना शुरू किया। वो ऊंची ऊंची झाड़ियों से उलझता गिरता पड़ता जंगल में घुसा जा रहा था। अचानक एक फायर हुआ और एक गोली सनसनाती हुई उसके कानों के करीब से निकल गई। उसके बाद कई फायर हुए। वो फुर्ती से जमीन पर लेट गया। लेटे लेटे वो एक खाई की आड़ में हो गया। उसने भी अपना रिवॉल्वर खाली करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से फायर होने बंद हो गए। शायद गोलियां चलाने वाला अपनी खाली रिवॉल्वर में कारतूस चढ़ा रहा था। फरीदी ने खाई की आड़ से सिर उभारा कि फायर हुआ। अगर वो तेजी से पीछे की तरफ न गिर जाता तो उसकी तो खोपड़ी ही उड़ जाती। दूसरी तरफ से फिर अंधाधुंध फायर होने लगे। फरीदी ने भी दो तीन फायर किए और फिर चीखता हुआ सड़क की तरफ भागा। दूसरी तरफ से अब भी फायर हो रहे थे, लेकिन वो गिरता पड़ता भागा जा रहा था। कार में पहुंचते ही वो तेज रफ्तार से शहर की तरफ रवाना हो गया। आप सुन रहे थे दिलेर मुजरिम कहानी का भाग 3। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिए भाग 4।